पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र मॉडल को हटाने का आदेश देता है और मयंक दिशा को रिजाइन लेटर पर साइन करने के लिए बुलाता है। दिशा होटल रंग महल जाती है जहां उसे एक सजावट मिलती है और मयंक के इंतजार में आती है। वो देवांश से मिलती है जो उसे रोक लेता है और उससे बात करना चाहता है। दूसरी ओर रूही लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रही है जहां वो एक दुर्घटना से बच जाती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 148। अब आगे कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ देर यूं ही अपने सीने में जकड़ने के बाद वे इंसान रूही से थोड़ा दूर हो रूही की गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, स्वीटी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वहीं रूही जो किसी के यूं अचानक खींचने से और अपने गले लगाने से पहले ही गुस्सा थी, वे अपने सामने जय को जब इस तरह अपने गालों पर हाथ रखते हुए इस तरह का सवाल करते हुए देखती है तो वे तुरंत जय का हाथ अपने गालों से हटाते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, जय मुझे क्या होगा और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह अपने करीब खींचने की, आखिर तुम चाहते क्या हो। इतना बोल वे गुस्से में जय को देखने लगती है और जैसे ही अपने कदम पीछे लेने को हुई वैसे ही जय दोबारा रूही के हाथ को पकड़ अपने करीब कर लेता है जिसकी रूही दोबारा उसके सीने के लग जाती है। इस समय दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे जहां जय एक बार फिर से रूही की खूबसूरती में खो गया था, वहीं रूही जय की खुद के इतने करीब देख काफी घबरा जाती है क्योंकि वे अब भी रुद्र की सजा भूली नहीं थी। उस सजा को याद करते ही रूही खुद को जैसे छुड़ाने लगती है क्योंकि उसे पता था अगर गलती से भी रुद्र को ये पता चल गया कि वे किसी लड़के के करीब गई थी, भले ही उसमें उसकी गलती हो या ना हो, मगर इस बार रुद्र उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इस बात को याद करके ही वे काफी डर जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि रुद्र की सजा उसके लिए कितनी दर्दनाक होती है। इसलिए रूही जैसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जय मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन जय रूही के खूबसूरत चेहरे को देखने में इतना खोया हुआ था कि रूही की आवाज़ उसके कानों में पहुंचकर भी नहीं पहुंच रही थी। वहीं रूही जब देखती है कि जय उसे नहीं छोड़ रहा तो उसे काफी गुस्सा आता है और वे अपनी सारी ताकत लगा जैसे अपना हाथ छुड़वाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के बदतमीज लड़के होगे। इतना बोल वे जैसे ही मुड़कर जाने को हुई अपने सामने का नजारा देख वे हैरान रह जाती है क्योंकि वे देखती है कि सारी की सारी बुक एक ही ऊपर एक करके पड़ी हुई है। अगर जय उसे नहीं हटाता तो वे सारी बुक उसके ऊपर ही गिर जाती और उसके बाद उसे कितनी चोट लग सकती थी इसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इस बात को सोच उसे जैसे ही ये एहसास होता है कि जय ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है बल्कि उसे बचाया है, इस बात का एहसास होते ही वे तुरंत पलटकर जय को देखती है तो जय गुस्से में उसे ही देख रहा था, जिसे देख रूही जैसे ही जय को देख उसकी सॉरी बोलने को होती है, वैसे ही जय बिना रूही की कोई बात सुने वहां से चला जाता है। जिसे देख रूही जय को आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाते हुए बोली, जय जय सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रूही की आवाज सुनकर भी जय नहीं रुकता और तुरंत कॉलेज से निकल जाता है, जिसे रूही अपने सर पर मारते हुए बोली, ये क्या कर दिया तूने रूही, बिना कुछ सोचे समझे तो किसी पर हाथ कैसी उठा सकती है। इतना बोल वे खुद को ही कोसने लगती है, फिर जैसे बाद में माफी मांगने का सोच परी और अर्जुन के पास कैंटीन की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल रंग महल, देवांश को घुटने के बल बैठा हुआ देख दिशा को यही लगता है कि देवांश इफे उस रात के लिए माफी मांगने वाला है, जिसे समझ दिशा जैसे ही देवांश के कुछ कहने को हुई तभी उसके कानों में देवांश की आवाज पड़ती है जो उसके कह रहा था, गुड गर्ल, मैं तुमसे बहुत दिनों से ये बात कहना चाहता था, पर मैं ये बात कहने के पहले ये चाहता था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही जगह बन जाए जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। लेकिन गुड गर्ल, अब मैं अपनी दिल की बात कहने में अब और देर नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि, इतना बोल वे कुछ पल के लिए रुक जाता है। वहीं देवांश की बात सुनकर उसे कुछ कुछ एहसास हो गया था कि देवांश उसके क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर भी वे दिल में यही चाहती थी कि वे जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल ना हो। वहीं देवांश अपनी बात कहने के बाद थोड़ी देर रुकता है, फिर अपनी जेब से एक बॉक्स निकाल उसे ओपन करता है तो दिशा देखती है कि उसमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डायमंड की रिंग है, जिसे देख दिशा की पकड़ अपने कपड़ों पर कस जाती है। वे यहाँ से भाग जाना चाहती थी पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे। वहीं देवांश उस रिंग को बॉक्स से निकालते हुए दिशा की तरफ उस रिंग को करते हुए बेहद रोमांटिक अंदाज में कहता है, गुड गर्ल, आई रियली लव यू। अभी से नहीं गुड गर्ल, मैं तुम्हें अपने तब से चाहता हूँ जब से तुम्हें पहली बार देखा था। आई रियली लव यू गुड गर्ल। गुड गर्ल, विल यू मैरी मी? अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं अब तुमसे शादी कर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
देवांश का इतना कहना ही था कि दिशा पूरी तरह से शॉक रह जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि देवांश उससे कभी भी ये सब कहेगा। उसने कभी भी देवांश को उस नजरिए से देखा ही नहीं जिस नजरिए से देवांश उसे देख रहा था। वे अभी भी देवांश की बात सुनकर हैरानी से बिल्कुल वैसी की वैसी ही खड़ी रह जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो इंसान किसी लड़की को नजरें उठाकर भी नहीं देखता, वे इंसान उसे इस नजर से देखता होगा। वे अपनी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी देवांश खड़ा होता है और दिशा के एक हाथ को पकड़ अपने हाथ में पकड़ी हुई रिंग को दिशा की उंगली में बेहद प्यार से पहनाने लगता है। वहीं दिशा जो अपने होश ख्यालों में खोई हुई थी, देवांश को खुद को रिंग पहनाता हुआ देख होश में आती है और तुरंत अपना हाथ देवांश के हाथ से छुड़वा देवांश से थोड़ा दूर जाकर चली जाती है। वहीं देवांश जो दिशा को बेहद प्यार से वे रिंग पहना रहा था, दिशा का यूं अपने हाथ को छुड़वा उसके दूर होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वे अपने हाथ में पकड़े हुए रिंग को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए अपने गुस्से को दबा दिशा से अपनी नर्म आवाज में ही बोला, गुड गर्ल, क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मेरे पास आओ। अब तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी बता दी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? गुड गर्ल, चलो मेरे पास आओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत रिंग ली है और देखना, ये रिंग जैसे ही तुम्हारी उंगली में जाएगी वैसे ही इस रिंग की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी।
इतना बोल वे खुद ही दिशा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी दिशा कुछ ऐसा कहती है जिसकी देवांश की आंखों में फिर से गुस्सा बढ़ जाता है।